वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्तिप्रददेवि श्रीराधिकात्मं नमोऽस्तु ते रीडिंग फ्रॉम श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 22 एंड टेक्स्ट नंबर 6 ल हिंदी ल श्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 22 और श्लोक संख्या 6 तिष्ठ्या मे भगवान् दष्टो दुर्दशो यो अकृतात्मना तिष्ठ्या पादरजा स्पृष्टम् शीर्ष्णा मे भवतः शिवम् तिष्ठ्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दशो यो अकृतात्मना तिष्ठ्या पादरजा स्पृष्टम् शीर्ष्णा मे भवतः शिवम् तिष्ठ्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दशो यो अकृतात्मना तिष्ठ्या पादरजा स्पृष्टम् शीर्ष्णा मे भवतः शिवम् तिष्ठ्या सौभाग्य से मे मेरा भगवान सर्वशक्तिमान दृष्टः देखा जाता है दुर्दशः सरलता से न दिखने वाला यह जो अकृत आत्मनाम जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया दृष्ट्या अपने भाग्य से पादरजः पैरों की धूलि स्पृष्टम स्पर्श करने पर शीर्षणा शिर से मे मेरा भवतः आपका शिवम कल्याणकारी अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन को आपके दर्शन हो सके क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं मैं आपके चरणों की धूलि को शिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ तात्पर्य दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है भागवत में कहा गया है महत्पाद रजो अभिषेकम अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषिक्त जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है महात्मानस्तु महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं इसीलिए महत कहलाते हैं जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने शिर पर चढ़ा नहीं लेता तब तक आत्मजीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मोन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महाराज रहुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्मोन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निस्संदेह आत्मबोध में सहायक होती है किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहां पर अकृतात्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर। आत्मा अथवा मन और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपं सागरजातं सहगन रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिष्ट्या मे भगवान दृष्टो दुर्लशो यो अकृतात्मनाम दृष्ट्या पादरजा स्पृष्टम शीर्षना में भवतः शिवम। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को शरीर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक घटक है, और आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण माध्यम है। उस माध्यम के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। पिछले कई श्लोकों में हमने देखा कि महाराज मनु कर्दम मुनि की स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ पे वे बताते हैं कि मैं कृतकृत्य हुआ हूं। किस चीज से? आपके चरणों की धूलि मेरे मस्तक पर धारण करके मैं कृतकृत्य हुआ। और कौन कह रहा है ये? मनु महाराज, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, जो इस भौतिक ब्रह्मांड के सबसे पहले सम्राट हैं। वे यहां पे बोलते हैं कि मेरा जीवन कृतकृत्य हुआ। जब व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से भर जाता है तब उसके मुख से यह शब्द निकलते हैं कि मैं आज कृतकृत्य हुआ। या मन की शांति हो जाती है, या मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तब मुख से यह शब्द निकलते कि मेरा जीवन कृतकृत्य हो। तो मनु महाराज हमें यहां पे बता रहे हैं कि मानवीय जीवन अगर कृतकृत्य हमें करना है, मनुष्य जीवन में अगर हमें कृतकृत्य होना है, तो क्या आवश्यक है उसके लिए? वो है ऐसे महात्माओं की चरणों की धूलि कि जिन्होंने भगवान के चरणों का पूरी तरह से आश्रय लिया है, और जिन्हें देख पाना कतई ही संभव नहीं है सामान्य व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है। यानी जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भौतिक प्रसादनों के भोगों में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति भगवान के इन महान भक्तों को देख नहीं सकता। यहां पे भी लिखते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है उन्हें आपके दर्शन नहीं होते। नीति शास्त्र में भी इसी विषय की पुष्टि की गई है। वहां पे कहते हैं कि चंदनम न वने वने, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र, चंदनम न वने, चंदनम तु वने वने। कि शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत की चोटी पे आपको माणिक नहीं मिलेगा, जो एक अमूल्य रत्न है, वो हर जगह पे या हर पर्वत पे नहीं मिलता है। मौतिकम न गजे गजे, हर हाथी के गंडस्थल में मौतिक नहीं रहता है, जिसको गज मौतिक कहा गया। और साधवो न ही सर्वत्र, साधु व्यक्ति जो है वे सर्वत्र नहीं रहते, जैसे कि हर जंगल में चंदन नहीं मिलता है। यानी साधुओं को पाना या साधुओं के दर्शन करना, उनका संग करना, यह बहुत ही दुर्लभ है। और उसका कारण भी यहां पे बताते हैं, क्योंकि वे लोग उन व्यक्तियों में नहीं आते या उन व्यक्तियों से इतना दूर रहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश नहीं कर पाता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 10वां अध्याय, जहां पे भगवान की एक सुंदर लीला का वर्णन किया गया है, दामोदर लीला। और वहां पे वर्णन आता है कि जब देवर्षि नारद शाप देते हैं नलकुबेर और मणिग्रीव को और उनको वृक्ष बना देते, तो उसी के आगे जाके नारद जी कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए शाप दिया ताकि आप नम्र हो जाओ, क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास धन रहता है उनके पास नम्रता ये गुण आना बहुत ही कठिन है। जिनके पास किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य रहता है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, बहुत ही उच्च कुल में जन्म होना यह भी ऐश्वर्य माना गया, फिर बहुत सारी कीर्ति होना, कई लोग बहुत ही प्रसिद्ध रहते हैं, कई लोग उनको जानते रहते हैं, यह भी एक ऐश्वर्य है कि समाज में आपकी एक स्थिति रहना और लोग आपको सब जानते हैं, पहचानते हैं। और जानना और पहचानने में बहुत अंतर है, एक्चुअली आपकी प्रसिद्धि है लोगों, वो भी एक ऐश्वर्य है। विपुल धन होना वो भी एक ऐश्वर्य है। शारीरिक सौंदर्यता या शारीरिक सौंदर्य रहना या शरीर सुंदर रहना ये भी एक ऐश्वर्य माना गया। फिर ज्ञान है, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य माना गया, क्योंकि आपका वैराग्य देखकर लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। ज्ञान तो है ही है, शारीरिक बल भी है, लेकिन इन ऐश्वर्यों के कारण अगर आप में अहंता आ जाती है, उस ऐश्वर्य का मद चढ़ जाता है, तो वास्तविक स्थिति हमें दिखाई नहीं देती। जो चीजें जैसी है उनको हम उस रूप में देख नहीं पाते, क्योंकि एक अंधता आ जाती है हमें, जिसको मद अंधता कहा गया, मदांध। व्यक्ति अपने अभिमान के कारण अंध हो जाता है। तो ऐसे मदांध व्यक्ति के लिए सबसे बड़े औषधि नारद जी कहते हैं दारिद्र्य। मदांधस्य दारिद्रम परम अंजनम, जो मदांध है जिसके पास अपनी अहंता का अभिमान है, उस व्यक्ति के लिए अगर उचित औषधि है तो वो है दारिद्र्य। और फिर आगे जाके बताते हैं देवर्षि नारद, क्योंकि दारिद्र्यता जो है वो व्यक्ति को अपने आप ही नम्र बना देती है, क्योंकि हर एक उपभोग्य वस्तु के लिए उसको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जब व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने आप में ही नम्र बन जाता है। और इसीलिए आगे जाके नारद जी कहते हैं कि ऐसे नम्र व्यक्तियों के ऊपर ही साधु लोग कृपा करते हैं, और विशेष करके जब साधु लोग भ्रमण करते रहते हैं तो कभी बड़े धनी व्यक्ति के यहाँ नहीं जाते, बल्कि सामान्य जो गरीब व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, उसके घर पे जाते हैं। क्योंकि वह दरिद्र व्यक्ति नम्रता के साथ, विनयशीलता के साथ उन साधुओं का आदर करता है और अपने गत जन्मों के कर्मों से और कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद उसी के तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल हम देखते हैं लोग इतने धनी हो चुके हैं कि अपने आप्त स्वकीय लोगों से भी दूर हो गए, तो फिर साधुओं को घर में बुलाना और उनकी सेवा करना ये तो संभव ही नहीं है उनके लिए। प्रभुपाद कहते हैं वहां पे कि जो व्यक्ति दरिद्र रहता है उसका दरवाजा हर समय घर का खुला रहता है सबके लिए, और जो धनी रहता है उसका दरवाजा हर समय बंद रहता है और दरवाजे पे एक लिखा हुआ रहता है, कुत्तों से सावधान, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो उसी वो उससे मालूम पड़ता है हमें कि अंदर कौन रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जो कुत्ते की प्रवृत्ति अपनाते हैं, जैसे कुत्ता अपने क्या कहते हैं मर्यादाओं में या अपनी अपने क्षेत्र में किसी को आने नहीं देता, दूसरा कुत्ता आ गया तो भौंक भौंक के पूरा उतल बुतल कर लेता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिसके पास इस श्वान प्रवृत्ति है कि ये मेरा है और ये मैं किसी को दूंगा नहीं, वो व्यक्ति कभी किसी का आदर सम्मान या प्रेम नहीं कर सकता। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं वे लोग विशेष रूप से अपने आप को दरिद्र स्थिति में पाना ही अच्छा रखते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से आप में नम्रता ला देता है। और जिनके पास नम्रता है वही लोगों के ऊपर साधु लोग कृपा करते हैं। तो ये साधु की कृपा क्यों आवश्यक है? श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन आता है जहां पे महाराज रहुगण को जब जड़ भरत जी उपदेश देते हैं तो वहां पे कहते हैं कि महत पदम महत पाद रजो अभिषेकम, कि हे रहुगण अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो उसके लिए कर्मकांडों का अवलंबन करना, यज्ञ याग करना या कठोर शारीरिक तपस्या करना ये उचित नहीं है। इसके द्वारा आप आत्मतत्व या आत्मबोध को नहीं जान पाओगे। तो उसके लिए आवश्यक क्या है? वे कहते हैं महत पाद रजो अभिषेकम, महात्माओं के चरण धूलि से अभिषिक्त हो जाओ, यानी उस धूलि को अपने मस्तक पे धारण कर। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भक्तपद धूलि भक्तपद जल भक्त भुक्त अवशेष यही तीन महाबल। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो उस भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको बल कौन प्रदान करेगा? भक्त पद धूलि, भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि आपको वो अवसर प्राप्त करके दे सकती है जिसके द्वारा आप भगवान के भक्ति को पाने के लिए प्राप्त हो पात्र बन जाओगे। और शास्त्र में ऐसे कई प्रसंग है जहां पे हम देखते हैं कि भगवान के भक्तों के चरण धूलि से ही इस भौतिक जगत के बड़े बड़े विपदाओं से कई जीवों की मुक्तता हो गई। जीवों की तो छोड़ो, भगवान स्वयं लालायित रहते अपने भक्तों के चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए, है ना आश्चर्य? भगवान स्वयं अपने आचरण से बताते हैं कि मेरे भक्त मुझसे कितने महान हैं और उनके चरणों की धूलि मैं भी अभिलाषा करता हूं कि मेरे मस्तक पे हो। और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, भगवान की लीला है, जिसे हम जान सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के चरणों की धूलि को कितनी महत्ता देते हैं। एक बार देवर्षि नारद द्वारका में भगवान की दिनचर्या देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे, और जब घूम रहे थे, घूमते घूमते भगवान के एक कक्ष में आए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि श्री भगवान अपने मस्तक पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। तो देवर्षि नारद को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या है? अरे जिनके नाम मात्र से ही चिंताओं की चिता हो जाती है, वे स्वयं आज चिंता में लग रहे, मस्तक पे हाथ रख के बैठे हुए। तो पूछते हैं कि हे भगवान क्या हुआ? तो भगवान बताते हैं कि थोड़ी शिरोवेदना है। बोले आपको, आपका शरीर तो दिव्य है, इनमें कहां से जरा व्याधि के लक्षण दिखने लगे? भगवान कहते हैं कि भाई है, अभी क्या करें? तो बोले इसके लिए कोई उपाय भी होगा। तो बोले उपाय तो निश्चित है, क्योंकि भगवान की सृष्टि पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाव पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। अगर समस्याएं है तो उसका हल भी है, केवल समस्याएं संसार में नहीं है बल्कि उनका हल भी है, उनका उपाय भी बताया गया। जैसे हमें भूख लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि उस भूख को मिटाने के लिए इस जगत में अन्न है। अगर अन्न ही नहीं होता तो भूख कहां से लगती? नहीं लगती ना। तो उसी प्रकार से ऐसी कोई समस्या इस संसार में नहीं है कि जिसका हल नहीं है या कोई उसका उपाय नहीं है, है। तो नारद जी ने पूछा कि हे भगवान आपके इस शिरोवेदना का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूली मुझे दे दे और मैं उसको अपने मस्तक पे धारण कर लूं तो ये शिरोवेदना से मेरी मुक्तता हो जाए। तो देवर्षि नारद ने तुरंत भ्रमण करना शुरू किया। सबसे पहले उद्धव जी के पास गए, बोले अभी सबसे बड़ा भक्त तो यहीं पे बैठा है उद्धव, तो उससे लेते हैं। उद्धव बोले क्या कर रहे हो, नरक में जाना है क्या मुझे? क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य और सबसे बड़े विद्वान वेदों के शास्त्रों के, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो कि भगवान के मस्तक पे मेरी धूली दोगे तो मेरी गति क्या होगी? संभव नहीं है वो। तो फिर वहां से निकल गए देवर्षि नारद, पूरे ब्रह्मांड में घूमे, हर एक से उन्होंने पूछा कि अरे आप भगवान के भक्त है तो आपके चरणों की धूली दोगे, आप भक्त है, आप कोई देने के लिए तैयार? और घूमते 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 व्रज में आके पहुंच गए। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर नारद जी चिंता करने लगे कि अभी मैं कहां से धूली लाऊं। और उसी समय कुछ गोपियां वहां से प्रस्थान कर रही, तो उन्होंने देखा अरे देवर्षि नारद तो हर समय आनंद में रहते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, और आज ये इतने चिंता में क्यों लग रहे? ऐसी कौन सी चिंता है जो नारद जी जैसे महान भक्त को ग्रास रही है? तो आके उन्होंने पूछा नारद जी क्या हुआ? तो नारद जी बोले द्वारकाधीश के शिरो वेदना है और वे बहुत उस वेदना से व्याकुल है। जैसी गोपियां ने सुना कि उनके लाला जो है उनके मस्तक में वेदना है और उनके जो प्रियतम है, तो उन्होंने तुरंत पूछा अरे देवर्षि उसका उपाय तो होगा कोई? तो बोले हाँ है, कोई भक्त अगर अपनी चरणों की धूली दे दे और वे अपने मस्तक पे धारण कर ले तो वे तुरंत इस शिरो वेदना से मुक्त हो जाए। तो एक गोपियों ने एक गोपी ने अपना आंचल बिछा दिया जमीन पे और सारी गोपियों को बोला कि झाड़ो अपने पैर, इसमें कर लो इकट्ठा धोलिया और दे दो। पोटली बांध के नारद जी के हाथ में दी, बोले और नारद जी भागो, बोले जल्दी यहां से जाओ, ये लगा दो हमारे नंदन नंदन के मस्तक। जैसे ही नारद जी के हाथ में वो पोटली है तो नारद जी बोले, अरे क्या कर रहे हो आप, जानते हो ये अगर धूलि उनके मस्तक पे गई तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा, अरे बुद्धू, वे हमारे प्राण है, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो हमारे लिए वही नरक है। हमारे प्राण इतने व्याकुल हो जा रहे हैं और आप नरक की बात लेके बैठे। बोले आपका तत्व ज्ञान आपके पास रखो और भागो पहले, बोले जाओ, चाहे करोड़ जन्म तक हमें नरक में रहना पड़ा तो कोई चिंता नहीं, जाओ। और फिर लाए धूली लगाने। फिर भगवान नारद जी को बोले, अरे इतना दूर तक जाने की क्या आवश्यकता थी, अपने चरणों की धूली दे देते। फिर नारद जी अचरज अचरज हो गए, वे कहने लगे कि मैं तो आपका भक्त नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं। भगवान के जो अनन्य भक्त रहते हैं, अभी देवर्षि नारद जी है कौन, जिन्होंने भक्ति सूत्र की रचना की, वे व्यक्ति कहते हैं कि हे भगवान, मैं कहां आपका भक्त हूं। भगवान का भक्त अपने आप को कभी भक्त नहीं कहता, वो कहता है कि मैं, हे भगवान, मैं प्रयास कर रहा हूं आपके चरणों का आश्रय लेने का, आपका नाम ग्रहण करने का, मैं प्रयास कर रहा हूं। और अगर आप इस प्रयास में मुझे सिद्धता प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के जो अनन्य भक्त है वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मत फलम मत जन्म मत फलम इदम मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य स्मर माम इति लोकनाथ। हे भगवान, अगर आप मुझ पे अनुग्रह करना चाहते हैं, आप मुझ पे आपकी कृपा बरसाना चाहते हैं, तो आप केवल केवल और केवल आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास करके मुझे स्वीकार करें। और ऐसे महान भक्त और ऐसे किसी भगवत भक्त के साथ अगर आपका सानिध्य हो जाता है या उनके संग में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो जाएगी। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी एक सुंदर रचना में लिखते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतो। ध्यायम स्तुमं स्तस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरण। ऐसे अगर गुरु मिले आपको, गुरु के लक्षण में बताते हैं। आजकल हम देखते हैं कि पूरे संसार में गुरुओं की फैक्ट्री बनी हुई है, हर महीना डेढ़ महीने के बाद कोई नया गुरु आ जाता है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वेदों के ज्ञान को अलग अलग रूप से तोड़ मरोड़ मोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ बताता है और मूर्ख लोग उनके पीछे भी भागते हैं। गुरु के लक्षण क्या है, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। किब पिप्र किबन्यासी शूद्र केनो है, शुद्र केनो न, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। चाहे व्यक्ति विप्र हो, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, या फिर शुद्र कुल में क्यों ना पैदा हुआ, लेकिन जो कृष्ण तत्व को जानता है, जिसका भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो चुका है, वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। आजकल भगवान को ही बाहर निकाल देते हैं भगवत गीता से या अपने अपने तत्व ज्ञान से और लोग गुरु बन जाते हैं। और कई संप्रदायों में कई जगह पे तो हम ये देखते हैं कि गुरु को इतना महान बना देते हैं कि भगवान उनके सामने कुछ भी नहीं रहते। ये दोनों भी अनुचित चीज है। शास्त्रों में कहा गया है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्ततः भाव्य एत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु शिष्य। वे कौन है गुरु? साक्षात हरित्वेन, शास्त्र कहता है कि भगवान के समान ही है। और गुरु यानी क्या है? बहुत ही भारी गुरुत्व जिसको कहा जाता है। और ये तत्व बहुत ही भारी है। और मूल रूप में गुरु तत्व हम देखा जाए तो मूल रूप में गुरु है अनंत शेष संकर्षण। और उनके ही प्रातिनिधिक रूप में हम अपने अपने गुरुओं को देखते हैं। गुरु वे व्यक्ति है जो भगवान को अपनी गोद में धारण कर लेते हैं, भगवान को आपको देने का सामर्थ्य रखते हैं। और ऐसे गुरु की आज्ञा की अवहेलना जब हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक स्थिति में हमारा पतन हो जाता है। गुरु तत्व की अवहेलना या अवज्ञा करने से साक्षात परमेश्वर भी कभी कभी समस्याओं में फंस जाते हैं। जैसे रामायण का एक प्रसंग है, लक्ष्मण जी जो अनंत शेष स्वयं है, हालांकि भगवान के कनिष्ठ भ्रात्रा के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन है तो गुरु तत्व। अगर गुरु की अवज्ञा कर लेते तो साक्षात भगवान को भी इस भौतिक जगत में दुख भुगतना पड़ता। जब उस सुवर्ण मृग को देखा और श्री राम जी ने बताया लक्ष्मण जी को कि आप थोड़ा सीता जी का ख्याल रखना, थोड़ा ध्यान देना, उनका संरक्षण करना, मैं जाके ये सुवर्ण मृग प्रकट के लाता, तो लक्ष्मण जी बोले भ्रातृषि क्या कर रहे हैं आप, असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, कि मेरे भाई ये असंभव है कि कोई सुवर्ण का मृग जन्म हो। ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले 14 राक्षसों को लेकर आया था, 13 को आपने मार दिया और ये इसको छोड़ दिया, मालूम नहीं आपका क्या उद्देश्य है। तो श्री राम जी कहे उनको, अरे लक्ष्मण मुझे मालूम है वो कौन है। तो कहते अगर आपको मालूम है तो फिर क्यों जा रहे, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं जाके लेके आता हूं। तो श्री राम जी कहते हैं अरे इतने सालों में पहली बार सीता ने मुझसे कुछ मांगा है, तो मुझे लेके आने दो, आप रुको यहां। गुरु तत्व की बात नहीं मानी, दुल्हन की बात मानी, निकल गए। कुछ समय के पश्चात माता परमेश्वरी सीता जो सारी शक्तियों की स्रोत है, उन्होंने भी गुरु तत्व की जब अवज्ञा की तो उन्हें भी 10 महीना रावण के कारागार में रहना पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा आप इस मर्यादा से बाहर ना निकले, मैं जाके देख के आता हूं। तो परमेश्वर ने गुरु तत्व की न सुन के अपने दुल्हन की सुनी, गए तो मृग नहीं मिला, आए तो सीता जी नहीं मिली। और यहां साक्षात सर्वशक्तियों की स्रोत माता सीता गुरु तत्व की अवज्ञा से सीधे रावण के कारागार में पहुंचे। इसलिए गुरु तत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु कौन है? जो भगवान को हमें प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान के प्रति हमारे मन में भ्रम पैदा करके रखे। आज के ऐसे गुरु है, गुरु नहीं कहना तो उनको तो हमें गोरु कहना चाहिए। बंगाली में गोरु यानी जानवर कहा जाता है। जो मत तो हो जाता है तो क्या करता है उसे मालूम नहीं रहता। उसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव है जो अपने आप को वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद समझ लेते हैं कि वे बहुत ही ज्ञानी हो गए, तो वेदों को छोड़ के अपना ही कुछ अलग से तत्व ज्ञान शुरू कर देते हैं और उस तत्व ज्ञान के द्वारा मूर्खों को भ्रमित कर देते हैं। है एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है आजकल, कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है और वे स्वयं सबसे सदगुरु बन के बैठे हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों के द्वारा आपको भगवत प्राप्ति होगी? ठीक है, समाज में कुछ व्यवस्था निर्माण कर लेंगे वे लोग, भौतिक साधन सामग्रियों के प्रति कुछ ज्ञान दे देंगे वो लोग, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे सकते जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाए। अगर भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान पाना है तो यहां पे लिखा है कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही प्रमाणित गुरु को अपने जीवन में स्वीकारना है। नहीं तो हमने देखा अभी कई ऐसे गुरु आ गए, लाखों लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए। आज कहां पे वे लोग चक्की पीस रहे, कोई तिहाड़ जेल में है तो कोई किसी अन्य जेल में है। अरे जब भगवत तत्व को उचित रूप से नहीं जानते हो तो कैसे अपने आप को अवडंबर में डाल देते हो कि आप उस भगवत तत्व को ही स्वयं हो या दूसरे को भगवान बना सकते हो? इसे समझना चाहिए, अन्यथा बहुत ही कठिन है इस मनुष्य जीवन की समसिद्धि को प्राप्त करना। और यहां पे प्रभुपाद कहते हैं, सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। ऐसे गुरुओं की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आदि पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, बल्कि जो कहता है मेरे भक्तों का भक्त है या मेरे भक्तों का सेवक है वो मेरा भक्त है। तो अगर भगवान को प्रिय बनना है तो भगवान के जो है उन्हें हमें प्रिय बनना होगा, क्योंकि ऐसे भगवान के प्रिय व्यक्तियों के सेवा से ही, गुरुओं की सेवा से ही सामान्य व्यक्ति का जीवन पूर्ण होगा। केवल अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि को या आध्यात्मिक सर्वोच्च सिद्धि जिसे भगवत प्रेम कहा गया उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और फिर उसमें श्रद्धा निष्ठा रुचि उसे प्राप्त होकर वो भगवान को प्राप्त कर पाए। और इसी सिद्धांत की पुष्टि स्वयं भगवान कपिल मुनि, जो कि कर्दम मुनि के पुत्र बनकर आए, वे करते हैं। वे कहते हैं कि मैं स्वयं भी अगर आपको ज्ञान दूं तो भी आपका उद्धार होना उतना संभव नहीं है जितना कि मेरे भक्तों के द्वारा उस ज्ञान को आप प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जब पूरा भगवत भक्ति के शास्त्र का वर्णन करने के पश्चात में माता देवावती को बताते हैं कि सताम प्रसंगात मम वीर्य संवित भवंती रुत्कर्ण रसायन कथा तज्जोश्वात अश्वपवर्ग वर्तमणि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। हे मेरी मां, आप मेरे भक्तों का संग करो सताम प्रसंग, क्योंकि उनके संग में मेरी कथा रसायन के स्वरूप में हो जाती है, कर्ण के द्वारा प्रवेश करके हृदय में पहुंच जाती है और फिर श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। फिर हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा निष्ठा रति और भक्ति प्राप्त होगी। और इसीलिए मनुष्य महाराज स्वयं यहां पे बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे लिए, भगवान के भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? भगवत लीला है, भगवत लीला से भगवान किसी के मन में कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। और विशेष करके स्त्रियों का स्वभाव ही है, जैसे रामायण का ही प्रसंग बताया जाता है कि माता सीता जब भी अलग अलग ऋषियों के आश्रम में वे जाते थे तो ऋषि पत्नियां जो भी माता सीता को उपहार देती थी वे वो ले लेती थी और लक्ष्मण जी के हाथ में थमा देती थी। तो एक बार श्री राम जी बोलते हैं कि आप ये ले तो रही हो लेकिन 14 साल तो हम यहाँ वन में ही है, इनका उपयोग कब करेंगे जो इकट्ठा करते जा रही हो। तो वे बोलती है जब हम वापस जाएंगे तब इनको पहनेंगे। तो ये स्त्री स्वभाव है और सब में है, तो कुछ अनुचित नहीं है, अपने स्वभाव के अनुसार वे कार्य कर। कारण तो है ही ना, आगे लीला कैसे बढ़ेगी। ना तो मेरे श्रवण में वैसा कुछ आया है ना मैंने कहीं पढ़ा है, तो गेस मार के फायदा नहीं है। भगवत इच्छा है और क्या है, भगवत इच्छा बलि असी, अन्यथा होगा कुछ ना कुछ तो होगा। भगवान की लीला इतनी क्या कहते हैं कि एक दूसरे में इतनी घुल मिल गई हो कि किसमें से क्या बाहर निकलेगा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। अगर उनके मन में वो इच्छा ही नहीं आती तो कहाँ से रहना है। नहीं यार, मंथरा जी और कैकेया माता इनके बारे में रामायण में बहुत ही उच्च अवस्था का लिखा हुआ है, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। क्योंकि भगवान अपने बहुत ही प्रिय व्यक्ति को ही ये कार्य करवाते हैं कि सारे लोग उनकी ये क्या कर रहे, घृणा कर रहे, केवल भगवान के भक्त ही उसको सहन कर सकते, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। जब शत्रुघ्न वापस आते हैं, लक्ष्मण जी उनको भेज देते कि जाओ आप, नहीं सॉरी, जब भरत और शत्रुघ्न ये दोनों चित्रकूट से जब वापस आते हैं तो नंदीग्राम में भरत जी रुक जाते हैं और वे शत्रुघ्न कहते हैं कि तुम जाओ यहां से और जाके अयोध्या में रहो। इन्होंने तो ऋषि वस्त्र धारण किए होते भरत जी ने, और शत्रुघ्न कहते कि मैं ये राजवेश में जाके कैसे रहूं, मेरे तीनों भ्राता जंगल के आदिवासियों के रूप में जाके रह रहे और मैं जाके इतने भोग विलास ऐश्वर्य में कैसे रहूं। तो भरत जी कहते हैं कि आप जाओ, ये मेरी आज्ञा है, क्योंकि भगवान के सारे प्रियजन अयोध्या में है और वे भगवान के विरह में है, तो उस विरह को कम करने के लिए आपको उनकी सेवा करने के लिए जाना होगा। तो बोले आप जाओ। तो अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न जी महल में चले आते हैं। आने के पश्चात वे सबसे पहले माता कौशल्या के महल में पहुंचते हैं। जाके देखते हैं कि माता कौशल्या ग्रीष्म ऋतु में जैसे वृक्ष पूरी तरह से सूख जाता है, बिना पत्तों का हो जाता है, कृश हो जाता है, वैसे माता कौशल्या हो चुकी है। जाके प्रार्थना करते हैं माता कौशल्या को कि आप कुछ खा लो, क्यों 14-15-40 दिन हो गए होते हैं, ना किसी ने अन्न लिया होता है, ना किसी ने पानी लिया होता है। तो माता कौशल्या उसके शत्रुघ्न के प्रेम वश थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेती है और फिर शत्रुघ्न को बताती है कि हे शत्रुघ्न, सबसे पहले तुम अपनी माता कैकेयी के महल में चले जाओ। ऐसे मत समझना, उनकी घृणा मत करना, क्योंकि उनका मुझसे भी भगवान रामचंद्र के प्रति प्रेम ज्यादा है। बोले सबसे ज्यादा अगर दूध इन तीन माओं में किसी का रामचंद्र जी ने पिया है तो सबसे ज्यादा दूध पिया है बोले माता कैकेयी का। वो रह ही नहीं सकती, ये तो भगवान की कुछ लीला है कि जिनके कारण उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। आप जाओ उनसे जाके मिलो। तो जैसे ही शत्रुघ्न आते हैं तो देखते हैं कि पूरा महल उथल पुथल हो गया है, कोई चीज एक जगह पे नहीं है। हालांकि ऐसा कभी नहीं था, सबसे सुपन्न सुंदर और सुशोभित महल माता कैकेयी का था, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी भगवान के विरह में और जो चीज उन्होंने किए उसके प्रायश्चित में, कि जीवन में जीने के लिए कुछ उनके लिए उद्देश्य नहीं था, इसलिए अपने शरीर का त्याग करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। और जैसे ही शत्रुघ्न को आते देखा तो मंथरा तो डर गई कि अभी मालूम नहीं जाते समय तो लात मार के गया था, अभी क्या करेगा करके। उस महल में प्रवेश करने के पश्चात शत्रुघ्न माता कैकेयी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि एकदम सादे सरल वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, चेहरे की जो जो कांति थी पूरी निकल गई थी, तेज ही नहीं था चेहरे पर। केवल मंतरा उनको पंखा कर रही थी इसलिए मालूम पड़ा कि वे माता कैकेयी है। तो जैसे ही मंतरा ने शत्रुघ्न जी को देखा तो वो भागने लगी, तो कैकेयी का ध्यान गया और कैकेयी जी ने शत्रुघ्न पूछा, कुमार उसका कोई दोष नहीं है, अगर तुम्हें कुछ प्रताड़ना करनी हो या कुछ शिक्षा करनी हो तो उसकी मैं पात्र हूं। तो शत्रुघ्न शीघ्रता से माता कैकेयी के पास पहुंचे और कहा, मां मुझे भूख लगी है। जैसे ही कैकेयी ने सुना कि शत्रुघ्न मुझे मां कह रहा है, तो कैकेयी कहती, शत्रुघ्न आपने मुझे मां कहा? इस शब्द के लिए मैं पात्र नहीं हूं, मैंने ऐसा घृणित कार्य किया है कि अपने पति की मृत्यु का कारण बन गई हूं और सबके प्राण रूप जो प्रभु राम है उनको मेरे कारण वन में जाना पड़ा है और तुम ऐसे व्यक्ति को अपनी मां कहते हो। तो शत्रुघ्न कहते कि हे मां, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, भूख से और प्यास से मैं बहुत व्याकुल हूं, मुझे कुछ खिला दो, मुझे कुछ पिला दो। तो जैसे ही कैकेयी ने सुना उनकी आंखों में से पानी बहने लगा। 40 दिन तक वो रोई नहीं थी, अपने सारे दुख को सारी वेदनाओं को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। जैसे ही शत्रुघ्न ने उनको मां कहा तो उनके आंखों में से पानी ऐसे लगा कि जैसे कोई बड़ा क्या कहते हैं उसको डैम फूट गया हो, पानी का धरना फूट गया। और माता कैकेयी ने तुरंत मंथरा को बोला कि मंथरा जाओ कुमार के लिए दूध लेके आओ और थोड़ा सा उसमें केसर और शर्करा भी डाल देना। तो बहुत प्रसन्नता से मंथरा वहां से भागे और गरम दूध लेकर आ गए और कैकेयी के हाथ में दिया। कैकेयी ने कुमार के हाथ में दिया। शत्रुघ्न ने अपने हाथ में लेते ही कहा माँ आप भी ले लो ना थोड़ा। तो कैकेयी बोली मैं नहीं लूंगी तुम लो। तो शत्रुघ्न कहते कि मैं नहीं लूंगा जब तक आप नहीं लोगे। तो बोली कुमार ये क्या जिद कर रहे हो। तो बोली माता आपने ही हमें सिखाया है कि बड़ों का पहले आदर करना चाहिए, जब तक आप नहीं लोगे तब तक मैं नहीं। तो इतने प्रेमपूर्ण व्यवहार से माता कैकेयी का हृदय पूरा पिघल जाता और वे वो एक घुट दूध को ले लेती है और उसके पश्चात फिर शत्रुघ्न उसको ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान अपने अनन्य भक्त को ही किसी चीज का साधन बना देते हैं, कारण बना देते हैं, अन्यथा और नहीं कोई कर सकता जो माता कैकेयी ने किया। तो भगवान की लीला में भगवान अपने निजी अति प्रियतम भक्त को ही कभी कभी दोष का पात्र बना देते। इसीलिए समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे भक्ति में कार्य करते समय कई बार हमारे ऊपर दोष आ जाते हैं तो उनको अपना करके स्वीकार लो, क्योंकि उस स्वीकृति में यही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। श्री राधिका माधव योरपार।